वासना की दृष्टि से ना देखे, कान निंदा चुगली ना सुने, जुबान जो है वो किसी के साथ कौड़ा ना बोले। क्योंकि कभी कभी ये जुबान बड़े बड़े युद्ध को भी पैदा कर देता है। गुरु महाराज उपदेश कर देने, नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। फिक्का का भाव है रुखा, ऐसी बोली जो दूसरे के हृदय को विन के रख दे उसको फिक्का बोलना कहते। नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। जो मन को फिक्का बोलता है उसका तन और मन दोनों फिक्का हो जाता है, अर्थात उसका तन भी गंदा हो जाता है, मन भी गंदा हो जाता है। जब हम फिक्का बोलते हैं तो सुनने वाले के मन को दुख होता है, और जब अगला दुखी होता है तो हम भी दुखी होते हैं। एक प्रकृति का नियम है, सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। जब दूसरे को दुख देने से, फिक्का बोलने से किसी को कष्ट होता है तो फिर हम फिक्का क्यों बोलते हैं? शरीर में आप तरह तरह के सुंदर कपड़े, सुंदर आभूषण, परफ्यूम आदि शरीर को सजाते हैं सुंदर लगने के लिए। शरीर सुंदर हो, कपड़े सुंदर हो, गहने सुंदर हो, लेकिन बोली सुंदर नहीं है तो दो कौड़ी का नहीं। और यदि जवान मीठा है, जवान सच्चा है तो तुम भी प्रसन्न रहोगे, तुम्हारे पास जो बैठेगा, तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी होंगे वो सारे सुखी होंगे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज हम लोगों को उपदेश कर देने, नानक फिक्का बोले तन मन फिक्का होए। बाबा फरीद जी इसी चीज को प्रवक्ता दे रहे ने, एक फिक्का ना गालाए सबना में सच्चा धनी। ऐ इंसान तुम किसी को फिक्का ना हो, क्योंकि जिन्होंने तो फिक्का बोलता है, कौड़ा बोलता है, रुखा बोलता है, उसके अंदर भी वाहिगुरु का वासा है। जब घट घट में हरजू बसे संतन कहियो पुकार, संत महापुरुष ये हमें सीख देने ने के सारिया विच वाहिगुरु का वासा है, तो फिर फिक्का क्यों बोल दे? बाबा फरीद जी कहते ने, एक फिक्का ना गालाए सबना में सच्चा धनी। जो सच्चा वाहिगुरु है वो सारियां दे विच वास करता है। ਹਿਆਉ ਨਾ ਕਹੀ ਠਾਹੇ ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੋਲਵੇ। ਹਿਆਉ ਨਾ ਕਹੀ ਠਾਹੇ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਐਸਾ ਵਚਨ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਿਸਸੇ ਕਿਸੀ ਕਾ ਦਿਲ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਲਾਲ ਹਿਆਉ ਨਾ ਕਹੀ ਠਾਹੇ ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੋਲਵੇ, ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਲਵਾ, ਜੇਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਿਆਉ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਜਦੀ ਤੁਮਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਤੋ ਕਿਸੀ ਕੋ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕ ਕਰ। ਜਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ, ਜਦੀ ਤੁਮਕੋ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ, ਹਿਆਉ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕੌੜਾ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਬੁਰਾ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਰੁੱਖਾ ਵਚਨ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜਿਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਲ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਥਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਿਖਤਾ ਥਾ ਫਰਸ਼ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਵਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਥਾ। ਜਹਾਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਵਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਹਾਂ ਫਰਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਵਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਵੀ ਕਵੀ ਧੋਖੇ ਖਾਂਦੇ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਇਆ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਤੋ ਉਸਕੋ ਦੇਖ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਾਂਵ ਰੱਖਾ ਥਾ ਪਾਣੀ ਉਸਮੇ ਗਿਰ ਪੜਾ, ਸਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਬਿੰਗੇ ਗਿਰ ਪੜਾ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਹੱਸ ਪੜੀ, ਹੱਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਅੰਧੇ ਕਾ ਲੜਕਾ ਅੰਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਕਾ ਪਿਤਾ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਧਾ ਥਾ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਅੰਧੇ ਕਾ ਲੜਕਾ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਿਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾ ਥਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਮਨੇ ਮੁਝਕੋ ਐਸਾ ਬੋਲੀ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਤੁਮਕੋ ਭਰੀ ਸਭਾ ਮੈਂ ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਪਤ ਉਭਾਰ ਦੂੰ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਬ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਿਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ, ਦਰੋਣਾਚਾਰਜ, ਕਿਰਪਾਚਾਰਜ, ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜੂਏ ਮੇਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਥਾ, ਸਪਨੀ ਜੋ ਥਾ ਉਸਕਾ ਮਾਮਾ ਉਸਨੇ ਕਪਟ ਸੇ ਸਾਰਾ ਜੀਤ ਲਿਆ ਥਾ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕੋ ਵੀ ਦਾਵ ਮੇਂ ਲਗਾ ਦਿਆ ਥਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਥੀ इसके मन में अभी भी घाव था और भरी सभा में उसको जो है इज्जत खराब करना चाहिए। कहने का भाव मेरा यह है कि कभी कभी थोड़ी सी बोली, थोड़ा सा कड़वा वचन, थोड़ा सा रूखा वचन बड़े बड़े लड़ाई को जन्म देता है। घर में सास बहू, बहू सास के बीच तकरार या शादी होने के थोड़े ही देर बाद बहू कहती है हम तेरे माता पिता के साथ नहीं रहना, हम तेरे माता पिता के साथ नहीं रहना, भावे बेसमेंट में रह लूंगी, घट खा लूंगी, बाहर लूंगी। उसमें देखो, उसमें गलती दोनों का होता है, किसी का 19 किसी का 20। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा दोष बहू का है या सारा का सारा दोष सास का है। 19-20 किसी के अंदर 19 है, किसी के अंदर 20 है। हम ये नहीं देखते कि जो आई है वो हमारी बेटी के समान है, ये नहीं समझते, उसको वो प्यार नहीं दे पाते जो हम बेटी को देते हैं। और अगला भी जो आती है वो ये नहीं समझती जो मेरा पति है उसको सास ने 25 साल पाली है, वो ये नहीं देखती, आते ही मालिक बन बैठती। साहब गुरु नानक देव जी महाराज जो आज उपदेश कर रहे हैं, नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए, एक फिक्का वचन मनुष्य की जिंदगी को तबाह करके रख देता है। इसलिए सास संगत जी, सच तो बोलना है लेकिन साथ में जो है मीठा बोलना है, ऐसा वचन नहीं बोलना है जो दूसरे के मन को, दूसरे के हृदय को, दूसरे के जीवन को तबाह करके रख दे। जीवन में यदि आनंदित रहना चाहते हो तो बाबा फरीद जी का ये वचन एक फिक्का ना गालाए सबना में सच्चा धनी हे आओ ना कही ठाहे मानक सब अमोलवे सबना मन मानक ठाहन मूल मचालवा जेतो प्रिया दी सिख हे आओ ना ठाहे कहिदा। यदि प्रभु परमात्मा वाहेगुरु से मिलने की तमन्ना है, खिंच है, तो किसी के मन को ना दुखाओ। ईसा मसीह जी कहते हैं गॉड लव्स दोज हु लव देमसेल्व्स, परमात्मा उसको प्रेम करता है जो परमात्मा के बंदे को प्रेम करता है। जब सात संगत जी यहां पर गुरु महाराज उपदेश करते हैं नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए, तन मन फिक्का होए, शायद आपको ये पता होगा कि एक भाई बुद्धू हुआ, भाई बुद्धू साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का सिख लाहौर विच। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में आया महाराज, उसका भट्ठे का काम था। सच्चे बादशाह, हमने कितने बार लोगों से कर्जा ले करके भट्ठा में आवा लगवाया है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण या किसी प्रॉब्लम के कारण कच्चा रह जाता और सिर पर कर्जा हो गया बहुत ज्यादा। आप कृपा करो। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जो दया के सागर में बोले, ऐसा कर जाओ, एक छोटा सा लंगर करो, गुरु का और आसरा लो, अरदास कराओ, परमात्मा तेरा आवा पक्का करोगे। सात संगत जी गुरु का वचन मन करके भाई बुद्धू गया और वहां पर एक गुरु महाराज का ओट आसरा लेकर के भंडारा किया, लंगर किया, साथ में अरदास कराया कि आवा पक्का हो। लेकिन एक सिख गुरु का जिसका नाम था भाई लखू, वो बड़ा मस्ताना रहता था, बहुत मस्ताना मस्त। जो फकीर लोग होते हैं, जो प्रभु के रंग में रंगे होते हैं ना, उसके कपड़े बनना देखो, उसकी तो वृत्ति हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ी होती है। सात संगत जी, जब अरदास हो रहा था उसके थोड़ा देर पहले, जब वो लंगर छकने के लिए आया, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, जा यहां पर लंगर है नहीं कोई। एक चीज याद रखो, यदि घर में या कहीं लंगर करो, लंगर का भाव ये है कोई भी आ जाए उसको छकाना। पार्टी और लंगर में फर्क है। पार्टी में तो ये है कि जिसको आप इनवाइट करते हो, कार्ड देते हो, सदते हो, वही आता है, वो लंगर नहीं है। जो गुरु का लंगर है उस विच कोई भी आ जाए, सबका हक बराबर है उसमें, और किसी को मना नहीं करना चाहिए। लंगर विच कोई वितकरा लंगर विच नहीं होना चाहिए। यदि लंगर विच वितकरा करोगे तो लंगर का जो फल है वो नहीं मिलेगा। सात संग जी, भाई लखू आया लंगर छकने, उसके कपड़े उसके हालत को देख करके उसको बाहर कर दिया, यहां पर लंगर में चले जाए। अरदास हो रहा था, अरदास विच ये अरदास किया, सच्चे पातशाह मेरा आवा पक्का। और साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बोल दिए थे कि जा तेरा आवा पक्का रहोगा। भाई लखो ने भीज के, यूं तो वो हमेशा भीजा रंदा से प्रभु की याद विच मस्त रंदा से मस्ताना, उसने कह दिया कि तेरा आवा कच्चा रहेगा, कच्चा। लोगों ने कहा वो बेवकूफ है, वो यूं ही बोली जाता है, लेकिन वो कहा कि आवा तुम्हारा कच्चा रहेगा, ये बोल के चला गया। सात संग जी, जब आवा निकाला ईटा दा, सारा का सारा कच्चा। जब भाई बुद्धू आया साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में सच्चे पातशाह आप वचन किए थे कि आवा पक्का होगा, आवा तो कच्चा हो गया। साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जो जानी जान ने साक्षात परमात्मा ने भल मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन पर तब कहा। गुरु महाराज कहते हैं किसी सिख का दिल तो नहीं दिखाया, ये फिका ना काला है, किसी को फिका तो नहीं बोला था, किसी का अपमान तो नहीं किया। कहते महाराज याद तो नहीं है, लेकिन एक लंगर छकने के लिए आ रहा था, फटा कपड़ा, बुरा हाल, पागल जैसा लगता था देखने में, उसको बुला रहा हूं बाहर जा, बाहर जाए फिर लंगर नहीं है। साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बोले तुमको पता है वो कौन था? वो जो भाई लखो जिसकी वृत्ति हमेशा परमात्मा से जुड़ी रहती है, परमात्मा से जुड़ी रहती है, उसने कुछ बोला था? कहते हाँ, कहा था कि आवा कच्चा रहूंगा, कच्चा रहूंगा। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बोले कि जो सिख परमात्मा से जुड़ा हो उसका वचन कभी नहीं मिल सकता। महाराज आपका वचन? कहते मेरा वचन मिल सकता है लेकिन मेरे सिख का वचन नहीं मिल सकता। देखो गुरु महाराज अपने सिख की कितनी बड़ियाई दे रहे थे, फिर चलना तो डिग गया सच्चे पातशाह, अब क्या होगा, आपके वचन का क्या होगा? गुरु महाराज बोले कि उस सिख को बुलाकर क्षमा मांग के पहले उसको प्रसादा छकाओ और तू चिंता ना कर, आवा तो कच्चा ही रहूंगा, आवा अब नहीं पक्का हो सकता, लेकिन जाओ तूने गुरु का कोट आसरा लगा किया है, आवा तो कच्चा रहेगा लेकिन बिकेगा पक्के के भाव, आवा तो कच्चे ही रहेगा बिकेगा पक्के के भाव। शासन में जी यही हुआ, बरसात का मौसम था, लगातार काफी समय तक बारिश हुई, कहीं पर ईंट नहीं मिला, लोगी कच्चे ईंट को ही पक्के का पैसा देकर के लोगी ले गए। इसलिए यहां पर गुरु महाराज को उपदेश कर देने नानक फिक्का बोली है तनमन फिक्का हो, किसी के मन को ना दुखाओ, किसी के मन को ना दुखाओ। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस रूप में परमात्मा आ जाए, एक फिक्का ना गालाए सबना में सच्चा धन, सारिया विच प्रभु का वास हुंदा है, इसलिए किसी के साथ दुर्व्यवहार कौड़ा वचन रुखा वचन कभी ना बोलो यदि परमात्मा के मार्ग में जाना चाहते। आगे गुरु महाराज उपदेश कर देने फिक्को फिक्का सदिय फिके फिकी हो सोए, फिक्को फिक्का जो कौड़ा वचन बोलता है ना उसको लोग फिक्का ही समझ करके समझते कि फिक्का आदमी है। फिक्का का भाव ये है जिसका जीवन ना उसको समाज में आदर नहीं मिलता। जिस व्यक्ति का जवान कौड़ा होता है फिक्का बोलता है लोग उसके पास बैठ के खुश नहीं होंगे, उस यदि सामने से आ रहा हो तो लोग रास्ता दूसरा कर लेते हैं। फिक्को फिक्का सदिय फिक्को फिक्का सदिय फिक्के फिक्की सोए फिक्का दरगह सकिए मह फुका फिके पाए। उसको दरगाह विच जब दरगाह विच जाता है तो उसको बहुत बुरा हाल होता है, वहां स्वागत नहीं होता। जब भक्त जाते हैं ना तो देवता लोग फूल बरसाते हैं, लेकिन जब फिक्का लोग जिसका जीवन फिक्का है, कौड़ा है, दूसरे को दुख देने वाला है, उसको दरगाह विच सुट दिया जाता है, उसको कड़ाहे विच तलिया जाता है, बहुत कष्ट मिलता है। गुरु महाराज उपदेश करते हैं, फिक्का दरगाह सकिए मोह फिक्का मोह थुका कह पाए, उसके मुंह विच थुक पैदा है। फिक्का मूर्ख आखिए पाना गह सजाए, ये जो फिक्का बोलने वाला जो मूर्ख है उसको समा पा करके जुतियां पहनता है, ऐसा गुरु महाराज उपदेश कर देने। फिक्का मूर्ख आखिए पाना लह सजाए, पड़ा कहते जुतियां। आगे गुरु महाराज उपदेश कर देने महला पहला, अंदर झूठ है पैर बाहर दुनिया अंदर है। ऐसे लोग जो अंदर कुछ ते बाहर कुछ, अंदर तो मैल भरा होता है, समाज विच दुनिया विच भगत कहलवाता है, जिस तरह सज्जन ठग था ना, वो तो एक सज्जन ठग की बात है, यहां पर चारों तरफ सज्जन ही ठग फिरे पड़ते हैं। गुरु महाराज उपदेश कर देने महला पहला, अंदर झूठे पैर बाहर दुनिया अंदर फैल। अंदर तो दिल जो है वो झूठा है और बाहर समाज में बड़ा इज्जत बनाया हुआ है, इज्जत कि मैं बहुत सच्चा हूं, बहुत समाज में एक प्रतिष्ठा बनाया हुआ है कि मैं दानी हूं, मैं उदार हूं। सज्जन यही करता था, उसने धर्मशाला भी बनाया था, मस्जिद भी बनाया था, मंदिर भी बनाया था, सारे लोग आओ, बहुत मीठा वचन भी बोलता था, लेकिन उसका मीठा वचन जो है ऐसा था कि जैसे लड्डू में जहर डाला हो, लड्डू मीठा लेकिन जहर वाला लड्डू, मीठा लड्डू जिसमें जहर डाला हो वो खा करके क्या होगा। लोग उसके धर्मशाला में ठहरते थे, रात को उसको मार देता था, उसके सारे धन को हड़प लेता था सज्जन, नाम भी रखा था सज्जन, था दुष्ट, नाम रखा था अपने को सज्जन। साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने, अंदर झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल। अंदर तो झूठा है, जीवन बहुत खराब है, लेकिन समाज में अपने को शो करता है कि मैं बड़ा धार्मिक हूं, भला करने वाला हूं, बड़ा दानी हूं, उदार हूं। गुरु महाराज उपदेश कर देने, अठसठ तीरथ जे नाव है उतरे नहीं मैं। जिसका अंदर मैला है, बाहर शो करता है धार्मिक, वो अठाहट तीरथ भी करे लेकिन फिर भी उसका मन का मैल नहीं जाएगा। उसका मन का जो मैल है वो कभी भी इस बातों से नहीं जाएगा अठाहट तीर्थों नाम। फिर क्या होगा, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार। साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज को उपदेश कर देने, जिन पट अंदर, एक महापुरुष के जीवन को बता रहे हैं कि महापुरुष कैसे होते हैं। जिन पट अंदर जिसका मन रेशम रेशम के धागे वर्गा कोमल है, जिसका मन जिसका दिल इतना कोमल है जैसे रेशम का कपड़ा हो, और बाहर भावे वो फटे कपड़े गंदे कपड़े पाए हों। गुरु महाराज उपदेश कर देने, जिन पट अंदर बाहर उदर, बाहर तो भले बोली पाया टाकियां लगा हो कपड़े ते भले संसार। हमने देखा है बहुत से फकीर, वो बाहर तो कपड़े जो है सो साधारण होते हैं, फटे होते हैं, लेकिन उनका दिल जो है साफ पवित्र होता है। साध संगत जी, शायद इसमें आप लोग मणिकर्म गए होंगे। जो महापुरुष एक निर्मल संत थे, बाबा नारायण हरि जी, बाबा नारायण हरि जी जिन्होंने उस गुरुद्वारा की स्थापना की है मणिकर्म गुरुघर का, ये दास उनका दर्शन किया है, हमने आंखों से देखा है। उनका जो चोला होता था वो टाकियां लगा होता सी, एक डोली कितनी टाकियां होता सी, अपनी भक्ति उन्होंने सेवा करना, टाकियां लगा रहना कपड़े थे, लेकिन उनकी वृत्ति हमेशा प्रभु के साथ जुड़ा होता सी हमेशा। यहां साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने, जिन पट अंदर जिसका मन जिसका हृदय रेशम के धागे के समान कोमल है, बाहर उदर बाहर भावे टाकियां लगा हुआ कपड़ा पहनता है, ते भले संसार, वो वास्तविक में भला है, क्योंकि उसका लोक परलोक जो है सुलझा हुआ है, लोक परलोक बीच उसको मान मिलता है। तिन नेह लगा रब से ती देखने विचार, ऐसा व्यक्ति जो मन करके निर्मल है, भावे बाहर गंदा ही हो गए, उसका जो है नेह लगा रब से ती, उसका मन हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। नेह लगा रब से, नेह का भाव है प्रेम, उसका मन हमेशा परमात्मा के साथ परमात्मा के प्रेम में लगा रहता है। एक ने हजारों फकीर ऐसे होते हैं जो मस्ताने होते हैं, मस्त, क्योंकि जिस जो परमात्मा के रंग में रंगे होते हैं ना, वो कभी कभी उसको बाहर का कोई ख्याल नहीं होता। सरमद, सरमद के बारे में कहते हैं, सरमद ब्रह्म ज्ञानी था, नंगा ही रहता था। एक दिन औरंगजेब बादशाह जा रहा था, औरंगजेब बादशाह ने एक चोला कपड़ा फेंका उसके पास, तू नंगा रहता है इसको पा ले। सरमद ने उस कपड़े को लेके चोले को अपने नीचे रख लिया, उसके ऊपर बैठ गया। बादशाह आया, एक रोटी की तरह, मैं तो तुमको दिया था अपना पत बचाने वास्ते। कहता है बादशाह, मैं तेरा पत ढकूं कि मैं अपना पत ढकूं, किसका पत ढकूं, मेरा तो लोक परलोक जो है सो एकदम इज्जत ही इज्जत है मेरा, क्योंकि असी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया है, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो नीचे क्यों रख दिया चोला को, उसके ऊपर बैठ गया। कहते तेरे पाप से धरती जो है ना, ये धरती भी कांप रहा है, तेरा इज्जत बचाने के लिए मैंने नीचे रख दिया, उसके ऊपर बैठा। साथ समृद्धि जो फकीर लोग होते हैं
वो किसी का प्रवाह नहीं करते।
साथ संगत जी वही औरंगजेब ने सरमद को सिर कलम करा दिया, लेकिन उस वक्त भी वो मुस्कुरा रहा था, अल्लाह 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 को जाप करता था। अनल हक, अनल हक का भाव यह है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष सब यहां पर साहेब गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने, जिन पट अंदर बाहर कुदरत ते भले संसार, तिन नेव लगा रब सेती देखने विचार, रंग हसे। वो परमात्मा के रंग में कभी हंसता है रंग रोग है, कभी वो रोता है प्रभु के बिछोड़े में रोता है। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज भी कभी कभी आधी रात को उठकर उनके प्रेम के आंसू प्रभु को याद करके रोते हैं, हे प्रभु तू कहाँ है, किस रूप में है, तू फूलों में सुगंध रूप में है, सूरज में प्रकाश के रूप में है, पहाड़ों में हरियाली के रूप में है, आकाश में बदलों के रूप में है, हे प्रभु तू किन किन रूपों में इस संसार में विचर रहा है। रंग हसे, जो मस्ताने फकीर होते हैं प्रभु के रंग में रंगे हुए, वो कभी कभी अपनी मस्ती में हंसते हैं, या कोई दीवाना हंसे या जिसे तू तौफीक दे। हे प्रभु इस संसार में हंसता कौन है, सारा मुंह लटका के फिरी जा रहा है, मुंह लटका पता नहीं कौन, पूछोगे तू मुंह क्यों लटकाया होगा, वो क्या बताऊं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा वो, हमेशा उदास। किस बात, किसी पंछी को उदास मुंह लटकाया देखा है आपने, किसी जानवर को, किसी कीड़े मकोड़े को, किसी को देखा है आपने? ना ना ना। या कोई दीवाना हंसे, हे वाहेगुरु, या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस जहां में रहकर मुस्कुरा सकता है तू। आदमी जो है ना किसी न किसी अपने ही करतूतों को देख देख के जो है रोता है, मुंह लटकाता है। इसलिए ऐसा कोई वचन ही ना बोलो, ऐसा कुछ करो ही ना जिससे दरबार में शर्मिंदा होना पड़े। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने, जो फकीर होते हैं मस्ताने रंग हसे, प्रभु के रंग में हंसते हैं, रंग रोवे हैं, प्रभु को याद करकर वो रोते हैं, ब्रह्म में चुप भी कर जाए, कभी वो समाधि में जो है सो चुप हो जाते हैं। परवाह नहीं किसे केरी, बाज सच्चे ना, बाज सच्चे ना, ना का भाव है पति परमात्मा। एक परमात्मा के बगैर वो दुनिया में किसी का प्रवाह नहीं करता, किसी का प्रवाह नहीं करता। एक बार बाबा फरीद जी मस्जिद में बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे थे कुरान शरीफ, अचानक बारिश हुई, उनके मन में ख्याल आया कि अकबर बादशाह के पास जाकर कुछ धन मांग के लाए, और जो ये मस्जिद का छत जो चौराहा है उसको रिपेयर करवा लें। सात संगत जी जब बाबा फरीद जी गए महल बीच, उस वक्त अकबर नमाज पढ़ करके वो फरियाद कर रहा था हाथ जोड़कर, हे अल्लाह ताला मेरा खजाना और बढ़े, मेरे राज्य का विस्तार हो, हे अल्लाह ताला मेरा ये हो, मेरा ये हो, मेरा ये हो, इस तरह से दुआ मांग रहा था। बाबा फरीद जी सुनते रहे, थोड़े देर के बाद उठ करके वो आगे मदरसा आगे मस्जिद। जब अकबर बादशाह को पता चला, अकबर बादशाह दौड़ा दौड़ा आया मस्जिद में, क्योंकि अकबर बादशाह ने कितने बार बाबा फरीद जी को इनवाइट किया था, निमंत्रण किया था कि आप मेरे महल विच आओ, लेकिन वो आए, वो तो फकीर मस्ताने हैं, रंग हंसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नहीं किसे के, उन्होंने की परवाह है मस्ताने फकीरन। साध संगत जी आया, सिजदा किया, फकीर साईं आप महल विच आए, मैं क्या सेवा कर सकता, मैं ये दास आपका खड़ा। क्योंकि अकबर बादशाह फकीरों को सत्कार करता था, भलम राजा था, लेकिन बाबा फरीद जी बोले बादशाह ये छत चोर रहा था तो मैं सोचा कि तुमसे थोड़ा सा धन लेकर मांग के ले आऊं ताकि इसका रिपेयर हो जाए। हाँ फकीर साई जो हुक्म करो मैं तैयार हूं। लेकिन बाबा फरीद जी बोले कि नहीं नहीं अब जरूरत नहीं है, जब गया मैं तेरे पास तो मैं देखा तू भी मांग रहा है, तू भी प्रयास कर रहा है, तो मेरे दिल में आया कि तू जिससे प्रयास कर रहा मांग रहा मैं भी उसी से मांग लू, जरूरी मैं मांगते से मांगूं, एक मंगता दूसरे मंगते से मांगे वो चंगा लगता है। नहीं 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 तू बादशाह जा जिससे तू मांग रहा था ना ऐसी उन्हें कोई मांग लो। साध संगत जी यहां पर जो फकीर लोग होते हैं ना मस्ताने लोग रंग हंसे, प्रभु के रंग में हंसते हैं, रंग हंसे रंग रोवे प्रभु की याद में विरह में रोते हैं चुप भी कर जाए, कभी कभी प्रभु के सुरूर में जो है एकदम चुप हो जाते हैं मौन हो जाते हैं, परवाह नहीं किसे केरी, परवाह नहीं किसे केरी बाज सच्चे ना। एक प्रभु के परमात्मा के अलावे दुनिया में किसी का परवाह नहीं करते। दरबार ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए दरबार, और प्रभु के दर पर वो खड़े रहते हैं अर्थात उनके मन में संतोष होता है। देखो बिन संतोष नहीं हो रहा जाए, जिसके मन में संतोष है वो राजा है, जिसके पास करोड़ों धन है संतोष नहीं है तो वो भिखारी है, मांग ही भिखारी है, वासना ही भिखारी है। भिखारी का मतलब क्या है, और चाहिए और। एक होता है भिक्षु और एक होता है भिखारी, बड़े ध्यान से सुनना, भिक्षु और भिखारी में क्या अंतर है। भिखारी भी मांगता है भिक्षु भी मांगता है, भिक्षु को हम सम्मान देते हैं उनके चरणों में सिर झुकाते हैं भिक्षु के चरणों में, लेकिन भिखारी को कोई मांग देता है देते वक्त ले जा 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 तू जा, दो पैसा देता भी है बेमन से देता है आदमी और दो मिनट खड़ा रहे मैं दे दिया तू अभी फिर की कर रहा जा तू तू, मतलब ऐसे बोलता है। लेकिन भिक्षु को जब देता है ना कोई उसको सत्कार से देता है उसके चरणों में नमस्कार करता है। भिक्षु और भिखारी में क्या फर्क है सुनो, भिक्षु वो है जो प्रभु के रंग में रंगा रहता है, इतना रंगा रहता है कि उसको संसार का कोई ख्याल ही नहीं होता, शरीर की रक्षा के लिए कहीं से दो रोटी मांग के खा लेता है बाकी प्रभु के मस्त। भिक्षु को दो से चार रोटी दोगे चार नहीं लेगा दो ही लेगा, भिखारी को जितना मर्जी दिए जाए तुम्हारे पास दो रोटी लिया फिर दूसरे दरवाजे जाएगा फिर तीसरे दरवाजे जाएगा फिर चौथे दरवाजे जाएगा, वो मांगता ही जाएगा मांगता ही जाएगा मांगता ही जाएगा, वो रचता नहीं है। भिक्षु जीने के लिए खाता है, और भिखारी खाने के लिए जीता है, ये फर्क है। इसलिए हम भिक्षुओं को मान देते हैं, सत्कार करते हैं, उनके चरणों में सिर झुकाते हैं, लेकिन भिखारी को सामने देखना भी नहीं चाहते। कभी कभी तो सामने से आ रहा हो भिखारी तो आदमी मुख मोड़ लेता है। यहाँ पर साहेब गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने, दरबार ऊपर खर्च मंगा जब दे तखाए। जो प्रभु के रंग में रंगा हुआ है ना, वो प्रभु को यही कहता है, प्रभु जब तू देगा तो खा लेंगे। साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पिताजी जब 20 रुपया दिए कि बेटा जा सच्चा सौदा करके आना, जब गुरु नानक देव जी महाराज जा रहे थे, कुछ साधु लोग बैठे कई एक दिनों से, लगभग हफ्ता से रोटी नहीं खाई। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज पूछे, क्यों क्या बात है हफ्ता से रोटी तुम लोग नहीं खाए? कहते हमने एक ही निश्चय किया है कि हम उसकी बंदगी में मस्त रहते हैं, जब वो देगा तो खाएंगे। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज सोचे, इससे अच्छा चंगा सौदा, खरा सौदा, सच्चा सौदा और क्या होगा कि प्रभु के रंग में रंगे हैं, यदि इनको रोटी छका देते हैं तो ये तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। सत्संग जी साहेब गुरु नानक देव जी महाराज वो 20 रुपए का रोटी खिला दी, उसी की रोटी तो हम लोग खा रहे हो। ये जो लंगर है गुरु घर में, आपने किसी धर्म स्थान में लंगर देखा है? कहीं नहीं। ये जो गुरु, जितने भी गुरु घर में जो लंगर चल रहा है ना, वो 20 रुपए का इंटरेस्ट है उसी से, वो तो अभी बैंक में जमा 20 रुपये, वो फिक्स करा दिए ना गुरु नानक देव जी महाराज, और उसका इंटरेस्ट से सारे गुरु घर चल रहा है। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, दीवान दरबार ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए, दीवान एको कलम एका अम्मा तुम्मा मेल दर लखे, दीवान एको कलम एका अम्मा तुम्मा मेल, दीवान एको, एक चीज याद रखो, ये जो सारा संसार है ये परमात्मा का दीवान है। दीवान एको कलम एका, एक ही कलम से परमात्मा ने सबके मथे पर भाग्य लिखा है, एक ही कलम से। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मथे पर जो है लकड़ी के कलम से और राजा के मस्तक पर सोने के कलम से, ऐसा नहीं किया परमात्मा ने, ऐसा नहीं किया। दीवान एका कलम के, लेकिन एक चीज याद रखो कि प्रभु ने हरेक का जो किस्मत बनाया है उसके कर्मों के अनुसार बनाया है। जिसने चंगा किया है उसके किस्मत में चंगा लिखा है, जिसने बुरा किया है उसके किस्मत में बुरा किया है। कीता पाइए अपना सा घाल गृह, प्रभु ने हरेक को उसके कर्मों के अनुसार लिखा है। लेकिन अफसोस के व्यक्ति जो है, जब जीवन में संकट आता है, मैंने तो किसी के साथ बुरा किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन एक चीज याद रखो, परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। परमात्मा से बड़ा न्यायकारी कौन हो सकता है? वो जो भी तुम्हारे भाग में लिखा है तुम्हारे ही कर्मों के अनुसार लिखा है। इसलिए लेख न मिटे हे सखी जे लिखिया करता, जो वाहेगुरु ने लिख दिया है कलम से वो मिट नहीं सकता है। दीवान एको कलम एका हम्मा तुम्मा मेल दर लय लेखा पीड़ छुटे नानका ज्यों तेल। एक चीज याद रखो, यदि भैड़ा कर्म किया है तो दरगाह विच जैसे तेली होता है ना, वो सरसों को पीसता है ना तेल निकालने वास्ते, जिसने पाप किया है उसको जमराज ऐसे पीड़ू है, इस तरह कष्ट देना है। इसलिए चेतना है तो चेत लय। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने, दीवान एको कलम एका हमा तुम्मा मेल, दर लय लेखा पीड़ छुटे नानका जब तेल, पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही ते धारिये। साथ संगत जी ये पौड़ी की व्याख्या शाम को होगी क्योंकि समा हो गया। एक चीज तुलसी याद रखो के दीवान एको कलम एका हमा तुम्मा मेल, दर लय लेखा पीड़ छुटे नानका जम तेल। यदि तुम चंगा करोगे दरगाह विच तुम्हें मान मिलेगा, 33 करोड़ देवता तुमको फूल बरसाएंगे, वेलकम करेंगे, लेकिन यदि तेरे कर्म मारे होंगे तो बहुत बहुत जमराज जो है ना बहुत कष्ट दे। कहते लिखा हुआ ग्रंथों में कि उसको जो दुष्ट पुरुष है उसको ले जाकर के गर्म गर्म कड़ाही में तेल में उसको सिट देता है पहले, फिर आगे बैतरणी नदी, बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सावधान रहो, मुंह से फिक्का नहीं बोलना, किस मन में कोप नहीं रखना, किसी का बुरा नहीं करना, और जीवन को पवित्र हल्का प्रभु से यही आराधना करो, हे सच्चे पातशाह ये जिंदगी भावे थोड़ी रहे लेकिन एक फूल की तरह इस संसार को खुशबू दे, आनंद दे, और ये शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से लोगों का भला हो जाए जिससे हमारा भी भला हो, लोग सुखे परलोक सुहे ले, नानक हर ब्रह्म आपे मेले, भूल चुक दे खेमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।